ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। दलों की सहमति में संविधान संशोधन किया जाएगा, कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देववा का कथन। विवाह पंचमी महोत्सव अंतर्गत जनकपुर के रंगभूमि मैदान में स्वयंवर समारोह हुआ संपन्न। एक महीने के अंदर एआई नीति लाने की संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने जताई प्रतिबद्धता। और सीरिया में जारी द्वंद्व के कारण पिछले एक हफ्ते में करीब 2,80,000 लोग हुए विस्थापित। अब समाचार विस्तार से। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देववा ने कहा कि दलों की सहमति में संविधान संशोधन किया जाएगा। आज विराटनगर विमानस्थल पर संचार कर्मियों के साथ बातचीत के दौरान सभापति देववा ने कहा कि संविधान संशोधन के लिए 2/3 मत जरूरी है, इसलिए दलों के बीच सहमति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने हालिया चीन दौरे में पीआरआई को लेकर ऋण समझौता नहीं किया है। ये दावा करते हुए कि वर्तमान गठबंधन सरकार के प्रति जनता में असंतुष्टि नहीं है, उन्होंने कहा कि अब देश में राजनीतिक स्थायित्व बहाल होने के साथ ही देश समृद्धि की ओर आगे बढ़ा है। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल के स्वास्थ्य में सुधार आया है। प्रोस्टेट संबंधी इलाज के लिए त्रिवि शिक्षण अस्पताल में भर्ती राष्ट्रपति के स्वास्थ्य में सुधार आने की बात अस्पताल के निमित्त कार्यकारी निदेशक प्राध्यापक डॉ घनश्याम गुरुंग ने बताई। बता दें कि राष्ट्रपति पोडेल के इसी मार्गशीर्ष 19 गते को शल्यक्रिया हुई थी। जनकपुर धाम में जारी सप्ताहव्यापी विवाह पंचमी महोत्सव के मुख्य दिन आज रंगभूमि मैदान में राम जानकी का स्वयंवर समारोह संपन्न हुआ। जनकपुर के जानकी मंदिर से बाजे गाजे के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच निकले हुए डोले के राम मंदिर से गए डोले की 3 बार परिक्रमा करने के बाद स्वयंवर संपन्न हुआ था। स्वयंवर संपन्न होने के बाद जानकी मंदिर के परिसर में विभिन्न आकर्षक विवाह मंडप में मिथिला परंपरा अनुसार भगवान श्रीराम और माता सीता के प्रतीकात्मक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये बात जानकी मंदिर के सहमहंत राम रोशन दास वैष्णव ने बताई। प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत ने कहा कि न्यायालय को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए लॉटरी सिस्टम से पेशी का प्रबंधन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में लॉटरी सिस्टम से होने वाली पेशी प्रबंधन प्रक्रिया के अवलोकन के लिए आज बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधान न्यायाधीश राउत ने यह बात कही। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में विक्रम संवत 2078 मार्गशीर्ष 15 गति से लॉटरी सिस्टम में मुकदमों की पेशी का प्रबंधन शुरू हुआ है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा कुरुंग ने कहा कि जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई नीति लाई जाएगी। काठमांडू विश्वविद्यालय के कंप्यूटर क्लब द्वारा आज धूलीखेल में आयोजित आईटी मीट 2024 का उद्घाटन करते हुए संचार मंत्री गुरुंग ने ये बात कही। उन्होंने बताया कि एक महीने के अंदर एआई नीति लाकर जरूरी कानून बनाने की दिशा में सरकार क्रियाशील है। उन्होंने कहा कि राज्य संयंत्र अंतर्गत के निकायों में ई गवर्नेंस लागू किया जाए तो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा। भारत दौरे से लौटने के बाद काठमांडू आए भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामगेल वांगचुक ने आज स्वयंभूनाथ और बौद्धनाथ के दर्शन एवं पूजा आराधना की। स्वदेश लौटने के दौरान परराष्ट्र मंत्री आरजू राणा देववा ने त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल पर उनकी विदाई की थी। परराष्ट्र मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक ये उनका व्यक्तिगत भ्रमण होने के कारण किसी से उनकी भेंटघाट के कार्यक्रम नहीं थे। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G वीडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलीकॉम को 4G
सब को यो विश्वास होनी नेपाल टेलीकॉम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नोजी नेपाल टेलिकमको 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकमको 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेकपा एमाले के उप महासचिव प्रदीप ग्यावाली ने कहा कि सरकार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप और जबरन गुम किए गए व्यक्ति संबंधी छानबीन आयोग गठन की अंतिम तैयारी में है। प्रेस चौतारी नेपाल म्याग्दीद्वारा आज बेनीमा बुलाए गए प्रेस कन्फ्रेन्स में नेता केवाली ने कहा कि राजनीतिक सहमति के आधार पर बनाए गए सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप और जबरन गुम किए गए व्यक्ति संबंधी छानबीन से संबंधित आईन के क्रियान्वयन के लिए आयोग के पदाधिकारी चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। निर्वाचन आयोग ने रविवार से सभी प्रदेशों और जिलों के निर्वाचन कार्यालयों से मतदाता नामावली में नाम पंजीकरण शुरू करने का निर्णय किया है। इससे पूर्व स्थानीय तह उपनिर्वाचन के लिए देशभर से नियमित हो रहे मतदाता नामावली पंजीकरण को स्थगित कर दिया गया था। उपनिर्वाचन संपन्न होने के बाद फिर से नियमित मतदाता नामावली पंजीकरण एवं अद्यावधिक करने का काम शुरू किया जाएगा, ये जानकारी आयोग ने दी। यदि कोई व्यक्ति पेशे, व्यवसाय या किसी अन्य कारण से अपने स्थायी पते से भिन्न जिले में रह रहा है तो भी यदि वह आवश्यक साक्ष्यों के साथ मतदाता नामावली में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन करता है तो वो बाहर से भी मतदाता नामावली में अपना नाम दर्ज करा सकता है, ये बात भी आयोग ने बताई। आयोग के अनुसार मतदाता नामावली में पंजीकरण के लिए नेपाली नागरिकता का प्रमाण पत्र जरूरी है। नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्य संपादन समिति की बैठक इसी मार्गशीर्ष 24 गते के लिए बुलाई गई है। पार्टी मुख्यालय के मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पोर्टल से मिली जानकारी के मुताबिक बैठक सोमवार सुबह 9 बजे पार्टी सभापति शेर बहादुर देववा के निवास बूढ़ा नीलकंठ में बुलाई गई है। पोखरा स्थित सूर्यदर्शन सहकारी के रकम अपचलन में शामिल होने के आरोप में पुलिस ने पोखरा के कृष्ण गुरुंग को गिरफ्तार किया है, ये जानकारी प्रहरी प्रवक्ता एवं डीआईजी दान बहादुर कार्की ने दी। पुलिस के मुताबिक कतर जाते समय त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से गुरुंग को गिरफ्तार किया गया। विज्ञों ने ठंड के मौसम में बच्चों में दिख रही श्वास प्रश्वास संबंधी सर्दी खांसी गले में संक्रमण पेट दर्द लगातार समस्याओं के मद्देनजर आवश्यक सावधानी अपनाने का आग्रह किया है। काठमांडू समेत पूरे देश में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है, इसलिए इस मौसम में सर्दी लगने पर तुरंत दवा सेवन न करने का विज्ञों ने सुझाव दिया है। सर्दी के मौसम में खासकर बच्चों और ज्येष्ठ नागरिकों को अधिक देखभाल की जरूरत होती है। विज्ञों ने कहा है कि सर्दियों में सांस संबंधी समस्याएं, सर्दी, गले में संक्रमण, पेट में दर्द और अन्य समस्याएं अधिक होती हैं। उन्होंने आवश्यक सावधानी बरतने का आग्रह किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि सीरिया में जारी विद्रोह के कारण पिछले एक हफ्ते में करीब 2,80,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। इसी बीच सीरिया में इस्लामिक विद्रोहियों के राजधानी दमिश्क पहुंचने का खतरा बढ़ गया है। इस आशंका को देखते हुए देश के तीसरे बड़े शहर होम्स से हजारों लोगों का पलायन शुरू हो चुका है। विद्रोहियों ने गुरुवार को हमा पर कब्जा कर लिया था। पिछले सप्ताह एक और अहम शहर एलेप्पो पर भी उनका कब्जा हो चुका है। सन 2011 से सीरिया में एक दशक के युद्ध के बाद भी राष्ट्रपति बशर अल असद का शासन कायम रहा था। बशर अल असद को अपनी सत्ता बचाने में कामयाबी इसलिए भी मिली थी क्योंकि उन्हें ताकतवर सहयोगी ईरान, रूस और लेबनानी हिजबुल्लाह से मदद मिली थी। सीरिया में विद्रोही समूह जिहादी अतिवादी इस्लामिक स्टेट से लेकर कई अन्य हथियारबंद समूह थे जिन्हें कथित तौर पर अमेरिका और खाड़ी के अमीर शाही सरकारों से मदद मिल रही थी। अभी इसराइल से तनातनी के कारण ईरान की हालत कमजोर है। ईरान का सहयोगी हिजबुल्लाह भी बशर अल असद को बचाने के लिए अपने लड़ाकों को भेजता था लेकिन इसराइली हमले में हिजबुल्लाह भी ताकत खो चुका है। रूस ने पिछले कुछ दिनों में बशर अल असद के समर्थन में सीरिया में विद्रोही गुटों के खिलाफ हवाई हमला किया है लेकिन रूस की भी यूक्रेन से जंग के कारण सैन्य क्षमता पहले की तरह नहीं है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दलों की सहमति में संविधान संशोधन किया जाएगा, कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देववा का कथन। विवाह पंचमी महोत्सव अंतर्गत जनकपुर के रंगभूमि मैदान में स्वयंवर समारोह हुआ संपन्न। एक महीने के अंदर एआई नीति लाने की संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने जताई प्रतिबद्धता। और सीरिया में जारी द्वंद के कारण पिछले एक हफ्ते में करीब 2,80,000 से अधिक लोग हुए विस्थापित। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।